ణమో ఆయిర్యాణం ణమో గజ్జాయాణం ణమో లోయ సంసాహూణం ఈసు పంచ నమో యారు సర్వ పావ ప్రణాసనే మంగళాణం చ సర్వేషు పఠమం హవై మంగళం చత్తారి మంగళం అర్హంత మంగళం సిద్ధ మంగళం సాహు మంగళం కేవలి పణతు ధమ్మో మంగళం చిత్తారి లుగుత్తమా అర్హంత లుగుత్తమా సిద్ధలుగుత్తమా సాహులుగుత్తమా కేవలి పండతు ధమ్మోలు గుత్తమా చత్తారి శరణం పవ్వజామి అర్హంత శరణం పవ్వజామి సిద్ధ శరణం పవ్వజామి సాహు శరణం పవ్వజామి కేవలి పణతు ధమ్మో శరణం పవ్వజామి परम पूजनीय देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की जिनवाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज की மணியணாய்ந்த சிறு தரிய சத்தத்தயா பஞ்சகல்லான சோக்காவலே
పంచాయి పంచాయ భారత
इच्छा में भंते पंच महागुरु भक्ति का उस सगो कहो तत्सालो छेव अठ महापाड़ी हेर संयुक्तान अरहंतान अठ गुण संपन्नान उड्डलोय मथयम पैथ्यान सिद्धान अठ पवयन मऊ संयुक्तान आयरियान आयाराज सुजनानो विदेशयान उवज्जायान तिरियन गुण पालन रयान सब साहून विच्छकाल मच्छेमी पूजेमी वंदामी नमिशामी दुख खौ कम खौ बोहिलाओ सुगई गवण समाहि मरण जिण संपत्ति हो मज वंदितु सव्य सिद्धे भुवमचल मनोवमं गईं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमूसुय केवली भणियं ध्रुव अर्थात शाश्वत अचल अर्थात जहां से चलायमान नहीं हुआ जाता और अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है ऐसी गति को प्राप्त करने वाले सर्व सिद्धों की वंदना करके अहो भव्यजनों श्रुत केवलियों द्वारा कथित इस समय प्रावृत को मैं कुंद कुंदाचार्य कहूंगा। जो चारित्र दर्शन और ज्ञान में अवस्थित जीव है उसको स्व समय जानो और जो पुद्गल कर्म के परमाणुओं में स्थित है उसको पर समय। निश्चय से अपने एकत्व को प्राप्त जो भी समय है स्व समय हो या पर समय है वह लोक में सर्वत्र सुंदर है शुद्ध है सिद्ध समान है। फिर जब बंद की चर्चा करते हैं तो फिर उस शुद्ध स्वरूप से विरुद्ध परिणतियां सामने आती हैं। इसलिए बंद शुद्ध स्वरूप में विवाद डालने वाला है विकार पैदा करने वाला है। तो अपने एकत्व में नियत और पर से विभक्त अर्थात भिन्न अपने गुणों से एक रूप और अन्य पदार्थों से भिन्न रूप जो आत्मा है उसको समझना और पाना सुलभ नहीं है। सुलभ क्या है जिसको बहुत बार अपन सुन चुके हैं जिसको बहुत बार अपन पहचान चुके हैं और जिसको बहुत बार भोग चुके हैं वो सुलभ है। और वो क्या वस्तु है तो पांच इंद्रियों की कथाएं पांच इंद्रियों के बंधन और पुण्य पाप ये सब चिर परिचित है, पुण्य पाप और इंद्रिय विषय, इंद्रिय सुख, अर्थात विषय कषाय जो है जो संसारी जीवों के लिए चिर परिचित है। सबने कषायों की चर्चाएं सुनी है, सबने कषायों का परिचय पाया है, सबने कषायों का फल भोगा भी है और कषायों की तीव्रता का भी अनुभव किया है, इसलिए वो सुलभ नहीं है। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि उस एकत्व विभक्त आत्मा का मैं अपने स्ववैभव से, अपने निज वैभव से दाए हूँ, दर्शन कराता हूँ, यानी वो आत्मा मैं दिखलाता हूँ अपने वैभव से। मेरा वैभव क्या है? जैसे अन्य मतों में भगवत गीता का जो प्रसंग आता है उसमें श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि मैं अपने वैभव से, ये श्री कृष्ण जी के पास जो भी क्षमता रही हो उसके प्रभाव से उन्होंने अपना रूप बतलाया होगा, ऐसी उनकी कथा है। यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि मैं अपने निज वैभव से उस आत्मा का दर्शन कराता हूँ। और निज वैभव क्या है तो उसमें चार बातें बतलाई आचार्य कुनकुन स्वामी ने। पहली बात तो ये है कि मैंने साद्वाद के मर्म की उपासना की है, बारंबार शास्त्रों का स्वाध्याय किया हुआ है, तो एक तो मेरा वैभव हो गया शास्त्रों का ज्ञान। दूसरा वैभव क्या है कि मैंने तर्क वितर्क से भी उस ज्ञान को प्रमाणित किया है, आंख बंद करके प्रत्येक पंक्ति को अंधविश्वास के साथ स्वीकार नहीं किया है, मैंने परीक्षा करके उसको अपने अंदर उतारा है। और तीसरी बात, मुझे जो कुछ मिला है वो शुद्ध गुरुओं की उपासना से और आत्मा के अनुशासन से, संयम से प्राप्त हुआ है। पहला वैभव हो गया स्वाध्याय, दूसरा वैभव हो गया तर्क वितर्क, तीसरा वैभव हो गया गुरु की कृपा, और चौथा वैभव है कि मैंने स्वयं साधना करके उसका अनुभव भी कर लिया है। इतने वैभव के साथ मैं उस आत्मा के स्वरूप को दर्शाने जा रहा हूं, ये आचार्य कुनकुन स्वामी के वचन है और अमृतचंद स्वामी उसको खोल रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कि ये चार वैभव मेरे पास है और उस वैभव से मैं दिखला रहा हूं, क्योंकि इन चारों के बिना अगर कोई आत्मा का स्वरूप दर्शाने का प्रयास करता है तो वो प्रामाणिकता की कोटि में नहीं आता, क्योंकि कुछ ऐसी यौगिक प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं से गुजरने पर मनुष्य यूफोरिया में चला जाता है। यूफोरिया एक अवस्था होती है मन की कि जिस समय उसको एकदम एंडोर्फिन्स और फिर एक ब्लिसफुल एक्सपीरियंस जैसा होता है, उसको एकदम सांस रोकने पर या फिर तीव्र गति से सांस लेने छोड़ने पर और उसके बाद फिर रिलैक्स करने पर, विश्राम करने पर एक आनंद जैसा अनुभूत होता है, पर वो जो आनंद है उसमें और निर्मल आत्मा का जो स्वाभाविक आनंद है उसमें बड़ा अंतर है। तो कभी कभी उसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि आज तो मैं उस गहराई तक चला गया जो अध्यात्म के नाम से जानी जाती है, आज मैं अध्यात्म में पहुंच कर आ गया। ऐसा भ्रम नहीं, आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि ये चार प्रकार है, चार वैभव है, उससे मैं आत्मा को दर्शा रहा हूं। इसमें भ्रम का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसमें सब तरफ से वो परीक्षित है, कहीं भी कोई छल वाली बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के साधकों को अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती है, पर उन अनुभूतियों में वो अपनी उपलब्धि समझकर कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि ये जो मुझे आज आनंद आया है बस यही आत्मा का स्वरूप है, वहां रुक जाते हैं। वो तो सिर्फ मंद कषाय का स्वाद था, अभी आत्मा का स्वाद तो बहुत दूर है। वो तो जब ऐसे बैठे श्वास आदि का संयम धारण कर योगासन प्राणायाम आदि के माध्यम से मन को कुछ शांत किया, तो मन को शांत करने पर इच्छाएं घटी, इच्छाएं घटी यानी कषाय भी मंद पड़ी, और कषाय मंद पड़ी तो कुछ हल्कापन महसूस हुआ और उस हल्केपन को उसने आत्मा का आनंद समझ लिया। वास्तव में आत्मा का आनंद उससे भी गहन है, उससे भी आगे है। और जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो कुछ भी करते हुए आत्मा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तो ठीक है, करते रहने दो, उनको कोई चिंता की बात नहीं। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं कि देखो, मैं इतने भारी वैभव के साथ उस आत्मस्वरूप को दिखला रहा हूं, यदि दिखला पाऊं तो तुम भी इसी क्रम से उसको प्रमाणित कर लेना। किस क्रम से? मेरे शास्त्रों में चेक कर लेना कि जो जो मैंने बताया वो सब ठीक था कि फिर कुछ मन से ही बता दिया। देख लेना शास्त्रों में, फिर तर्क भी लगा करके देख लेना कि जिसको इतनी ऊंची अनुभूति हो चुकी है, जिसको वो आनंद प्राप्त हो चुका है, उसका जीवन कैसा होगा, उसकी मुद्रा कैसी होगी, उसकी वाणी कैसी होगी, क्या उसमें और सामान्य मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं होगा? ऐसा कैसे संभव है? तो अपनी तर्कणाओं के माध्यम से भी टटोल के देख लेना। और तीसरी बात, शुद्ध गुरु परंपरा से वो ज्ञान यदि आया हो तो विश्वास करना, और यदि कहीं बीच में प्रदूषित हो गया हो तो फिर सावधान रहना। और चौथी बात, स्वयं तुम साधना करके अनुभव कर लेना, यदि वो बात खरी निकल जाए तो समझ लेना कि हाँ, जो बात मुझे मिली थी वो अनुभवी की बात थी, और अनुभवी अनुभव की बात करते हैं, अनुभवी की बात तो सभी करते हैं, अनुभव की बात सिर्फ अनुभवी करते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु ने वो चीज देख ली है जिसको शिष्य देखने के लिए उनके चरणों में आए हैं, और उनके चरणों के सिवाय वो चीज कहीं से दिखाई देती नहीं, इसलिए उनके पास आया। और यदि दर्शाने में मैं चूक जाऊं, अर्थात मैं दर्शा रहा हूं और तुम्हें दिख ना पाए, मैं तो कहीं से भी कमी नहीं रखूंगा, पर बात यह है ना कि दर्पण में अपना मुखड़ा वही देख सकता है जिसकी आंखें ठीक हो। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति, आंखों से रहित मनुष्य के लिए दर्पण क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो चुपकी यदि तुम्हें न दिखलाई पड़े तो छलम न घेतव्य, अर्थ का अनर्थ मत करना, छल ग्रहण मत करना। फिर वो शुद्ध आत्मा क्या वस्तु है जिसको समय कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि वो वस्तु न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, इसलिए शुद्ध है, और वो जो है सो है, ये निश्चय का कथन। व्यवहार से उसको ज्ञाता दृष्टा आदि कह सकते हो, और फिर व्यवहार से उसको संसारी सिद्ध आदि भेद प्रभेदों में भी विभाजित कर सकते हो, लेकिन निश्चय से आत्मा जो है वही है। व्यवहार से आत्मा के पास चारित्र है, आत्मा के पास दर्शन है, आत्मा के पास ज्ञान है, इस तरह इन गुणों को और गुणों को धारण करने वाले आत्मा को व्यवहार में पृथक करता है, गुण और गुणी में भेद डालता है। पर निश्चय न से न विनाणम ज्ञान नहीं, न चरित्रम चरित्र नहीं, न दंशनम न दर्शन है। अर्थात आत्मा निश्चय से ज्ञान दर्शन चरित्र वाला भी नहीं है। जानवो शुद्ध शुद्ध ज्ञायक है। जब आत्मा शुद्ध ज्ञायक है तो बस यही ग्रंथ पूर्ण कर दो, आ गया समझ में। शुद्ध ज्ञायक है आत्मा, और उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। आचार्य महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार कोई ब्राह्मण एक मृक्ष पल्ली में पहुंचता है, अर्थात जंगल में किसी गांव में पहुंच जाता है जहां पर बीलों की बस्ती है, तो बीलों की बस्ती में जब वो पहुंचता है तो उसके तिलक को, उसके चेहरे की मनोक्षीणता को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर एक भील उनको प्रणाम करता है। उस प्रणाम को देखकर स्वस्ति त्यभिहिते सति, ये ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देते हैं स्वस्ति। तथा विद वाच्य वाचक संबंधावबोध बहिष्कृतत्वान् न किंचित अपि प्रतिपद्यमानो मेषेव इवान्यमेषोन्मेषित चक्षुः प्रेक्षत एव। तो जब ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देते हैं संस्कृत में स्वस्ति, तो वो मेंढा जिस तरफ ऐसे घेटा एक दृष्टि लगा करके देखता रहता ना, वैसे इनके चेहरे की तरफ देखता, ब्राह्मण के मुख की तरफ, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता। मैंने प्रणाम किया, इनने ये क्या बोला, स्वस्ति इसका क्या मतलब होता है, चौंक जाता है वो, ये क्या है। यदा तो किंतु जब सैव तदतद् भाषा संबंधैकार्थक न अन्येन तेनैव वा म्लेच्छ भाषां संपादाय स्वस्ति पदस्या विनाशो भवतो भवतु इत्यभिधेयं प्रतिपाद्यते तदा सद्य एव उद्विग्नानन्दमय अश्रु जलद् जलद् लोचन पात्र तत् प्रतिपद्यते एव। फिर जब वो ब्राह्मण अथवा कोई और व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो दोनों भाषाओं को समझने वाला है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है कि इसने संस्कृत नहीं समझी इसलिए इस प्रकार मेरा मुंह देख रहा है, तो उसको समझा देते हैं कि भवतः अविनाशः भवतु, जीते रहो, तुम्हारा मंगल हो, ये इसका अर्थ होता है स्वस्ति का। तो जब उसको अर्थ समझ में आता है तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं कि मेरे जैसे भील को इतना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश हो जाता है। बस इसी प्रकार आत्मा जो है सो है, ये भाषा सबकी समझ में नहीं आती, और सबकी समझ में न आने के कारण जिस तरह उस ब्राह्मण को म्लेच्छ भाषा में उसके लिए समझाना पड़ा था कि तुम्हारा मंगल हो, ये स्वस्ति का अर्थ होता है, तो आत्मा जो है सो है इसका अर्थ फिर व्यवहार की भाषा से समझाना पड़ता है कि आत्मा जो है सो है क्या है, उसको समझाने के लिए फिर व्यवहार नय का आलंबन लेकर आचार्य महाराज आत्मा का विस्तृत वर्णन करते हैं। 20 प्ररूपणाओं के द्वारा आत्मा का वर्णन करने के बाद फिर बोलते हैं कि वो जो है सो है, तब उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं कि वाह क्या अलौकिक वस्तु है आत्मा। यहाँ तो मेरे को समझ में नहीं आया था कि आत्मा जो है सो है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अब आगे क्या सुनेंगे, जो है सो है, पर अब जब पूरा विवरण सुना तब समझ में आया कि ओहो इतनी रहस्यपूर्ण, इतनी अद्भुत, तत्चाण परम तत्चम, तत्वों में परम तत्व, द्रव्यों में परम द्रव्य, अस्तिकायों में उत्कृष्ट अस्तिकाय, और सब में श्रेष्ठ वो जीव वो आत्मा कितना अद्भुत पदार्थ है, तब समझ में आता है। तो इसलिए साधारण संसारिक प्राणी चूंकि निश्चय से अपरिचित है, इसलिए उनको व्यवहार से समझाना पड़ता है। जैसे भील संस्कृत भाषा से अपरिचित होता है तो उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ता है स्वस्ति शब्द का अर्थ क्या है, तुम्हारा मंगल हो। इसी प्रकार आत्मा जो है सो है, उसका अर्थ क्या है, इसको समझाने के लिए व्यवहार नय का आलम बन लिया जाता है। जो ईश्वर नहीं गच्छई अपान विणंत केवलं शुद्धं तं सुय केवलिमिसिनो भणन्ति लो यप्पदीवयरा जो सुयनाणं सर्वं जाने सुय केवलिं तमाहुजिना नाणं अप्पा सर्वं जम्मा सुय केवली तम्मा। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल इस शुद्ध आत्मा को जानते हैं, उनको लोक प्रकाशक केवली भगवंत श्रुत केवली कहते हैं। संपूर्ण श्रुत ज्ञान से जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो श्रुत केवली, और जो संपूर्ण श्रुत ज्ञान को जानते हैं उनको भी जिनेंद्र भगवान श्रुत केवली कहते हैं। तो श्रुत केवली की दो परिभाषाएं होगी, श्रुत द्वारा आत्मा को जानने वाले ऋषिराज श्रुत केवली हैं, और संपूर्ण श्रुत को जानने वाले ऋषिराज श्रुत केवली हैं। तो आत्मा को जानने वाले श्रुत केवली निश्चय श्रुत केवली, और शास्त्रों को जानने वाले श्रुत केवली व्यवहार श्रुत केवली है। श्रुत केवली क्यों है, आचार्य कहते हैं क्योंकि आत्मा ही ज्ञान रूप है। तो अगर शास्त्रों को भी जानेंगे तो वो जानने वाला कौन होगा, आत्मा। तो वो ज्ञान कहाँ रहेगा, आत्मा में। तो चूंकि वो जो शास्त्रों का ज्ञान है वो आत्मा से पृथक नहीं है, आत्मा में ही है, इसलिए श्रुत केवली हो गया, संपूर्ण शास्त्र के ज्ञाता। और उस ज्ञान के द्वारा यदि वो अंतर्मुख होकर अपने ही आप को जान रहे हैं, आत्मा को, तो भी श्रुत केवली है। पर चूंकि अब वो बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख है, निश्चय श्रुत केवली हो गए। वास्तव में निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली एक ही व्यक्तित्व में घटित होने वाली दो परिभाषाएं हैं। संपूर्ण श्रुत को जान लिया उस अपेक्षा से व्यवहार श्रुत केवली, आत्मा को जान लिया उस श्रुत ज्ञान से उस अपेक्षा से निश्चय श्रुत केवली। व्यक्ति अलग नहीं है, शास्त्र को जान रहे हैं इसलिए व्यवहार श्रुत केवली, आत्मा को जान रहे हैं इसलिए निश्चय श्रुत केवली। परंतु में व्यवहार को छोड़ना है, ये भी ध्यान में रखने की बात। तो फिर शंकाकार के मन में शंका होती है कि जब व्यवहार से इतनी सब बातें बतला रहे हैं आप, तो फिर उसको छोड़ने की बात भी क्यों करते हो। तो आचार्य कहते हैं व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देशिदो दुसुद्रणो भूयत्थमस्सिदो खलु सम्माइथी हवै जीवो। व्यवहार असत्य है और निश्चय सत्य है। फिर दूसरे प्रकार से कह रहे हैं कि व्यवहार सत्य है, उसमें यहां पर अपन भी लगा लो, क्योंकि साध्वाद शैली में व्यवहार सत्य भी है और निश्चय असत्य भी है। ये अर्थ जयसेन स्वामी ने निकाला, बड़ा अद्भुत अर्थ है, समझने योग्य है। बड़े बड़े समझदार के पाठी भी इस अर्थ में कभी कभी चूकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक पहला कथन तो सीधा सीधा ये था कि व्यवहार असत्य है निश्चय सत्य है। फिर जो दूसरा कथन था वो दू शब्द जो है, भूयत्थो देशी दो दू सुद्धनो, इस दो शब्द से आचार्य जयसिंह स्वामी ने दूसरा अर्थ निकाला कि व्यवहार सत्य भी है और निश्चय असत्य भी है। ये समझने की बात है। अब एक बात तो यह है कि व्यवहार असत्य है, ये कौन सा वाला व्यवहार असत्य है? और दूसरा जो व्यवहार सत्य भी है वो कौन सा वाला व्यवहार? तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि व्यवहार दो प्रकार का होगा। और इसी तरह निश्चय सत्य है और फिर निश्चय असत्य भी है, तो निश्चय भी दो प्रकार का हो गया। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से समझ लो कि जो व्यवहार भिन्न द्रव्यों का एक रूप से कथन करे, जो पृथक वस्तु को मिला करके कहे, वो व्यवहार असत्य है। जैसे वासुपूज्य भगवान लाल थे, ये जो कथन है ये असत्य व्यवहार कथन है। पर फिर भी असत्य कथन का किसी भूमिका तक आलंबन लिया जाता है, पर अंतरंग में ये बात स्पष्ट रहती है कि वासुपूज्य भगवान का शरीर लाल था, भगवान की आत्मा लाल नहीं थी। आत्मा लाल नहीं थी इसलिए ये कहना कि वासुपूज्य भगवान लाल थे ये व्यवहार में है, और ये व्यवहार में असत्य है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा व्यवहार कौन सा है? जो सत्य भी है, ऐसा एक व्यवहार है। जो असत्य व्यवहार होता है उसको असद्भूत व्यवहार नहीं कहते। वो चाहे उपचरित हो या अनुपचरित हो, दोनों प्रकार का हो सकता है। असद्भूत व्यवहार यानी दो भिन्न सत्ता वाले, यानी आत्मा, आत्मा जो है चेतन सत्ता वाली वस्तु है, और फिर शरीर जो है वो जड़ सत्ता वाली वस्तु है। तो दो भिन्न सत्ता वाले पदार्थों को मिलाकर उनका कथन करना असद्भूत व्यवहार है। असत, जीव की सत्ता और पुद्गल की सत्ता दोनों भिन्न भिन्न है, तो वो असद्भूत व्यवहार का जो कथन था कि वासुपूज्य भगवान लाल थे, ये असत्य इस अपेक्षा से। कोई भी कथन सर्वथा असत्य और सर्वथा सत्य नहीं होता, वो किसी दृष्टि से सत्य किसी दृष्टि से असत्य होता है। इसलिए ये दृष्टिवाद समझने योग्य है, जिसको स्यादवाद कहा जाता है। अब जो सत्य व्यवहार है वो क्या है? वो भी निश्चय की अपेक्षा से तो सत्य नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से तो व्यवहार अभूतार्थ ही है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से विचार करो, जो व्यवहार सत्य भी है ऐसा कहा ना, वो कौन सा व्यवहार है? आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, आत्मा के पास ज्ञान गुण है, आत्मा के पास दर्शन गुण है, आत्मा के पास चारित्र गुण है, आत्मा के पास सुख गुण है, आत्मा के पास सम्यक्त गुण है, आत्मा के पास व्यवहार वीर्य गुण है। ये वाला जो व्यवहार है ये असत्यार्थ नहीं है, ये झूठा नहीं है। समझ रहे हैं अंतर आप? वासुपूज्य भगवान लाल है ये व्यवहार तो झूठा है, लेकिन वासुपूज्य भगवान के पास केवल ज्ञान है, वासुपूज्य भगवान के पास अनंत सुख है, ये जो व्यवहार है ये निश्चय नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? जो गुण गुणी का भेद करने वाला न होता है वो कभी निश्चय नहीं होता, क्योंकि निश्चय ने गुण और गुणी को कभी भिन्न नहीं करता। ये व्यवहार में है, लेकिन ये सद्भूत व्यवहार है, क्योंकि ज्ञान गुण की सत्ता आत्मा में है। मिथ्या नहीं है ये कथन, ज्ञान गुण है कि नहीं आत्मा में? निश्चित है। तो ये सद्भूत व्यवहार में सत्य है। समझ में आ गया? अब निश्चय नए में देखिए, अपन जाकर के देखिए, क्योंकि ये नए समझ ले तो फिर समय सार और आसानी से समझ में आता है, और नयों में अगर भ्रम हो जाए तो फिर समय सार नहीं समझ में आता। तो देखो, ये बहुत बड़ी जानकारी की बात यहाँ आपके सामने हमने रखी है। समय सार अभी बस शुरू ही हुआ है समझ लो, और उसमें ये रहस्य आपको मिल गया कि व्यवहार दो प्रकार के होते हैं और निश्चय भी दो प्रकार का होता है। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। जिनकी धारणा में व्यवहार सिर्फ असत्य ही असत्य है, उनको विचारों को ये नहीं पता कि सद्भूत व्यवहार नए नाम का भी कोई नए जिनेन्द्र भगवान के आगम में आता है। वो सिर्फ व्यवहार झूठा है, व्यवहार झूठा है, व्यवहार झूठा है, बस सर्वथा झूठा है, इसमें लग जाते हैं, जबकि ऐसा कथन नहीं है। आचार्य कह रहे हैं कि व्यवहार में भी एक ऐसा व्यवहार होता है जो सद्भूत है, वो झूठा नहीं होता। जो गुण और गुणी में भेद तो करता है, लेकिन वो भेद अवास्तविक नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो प्रदेश भेद नहीं है गुण और गुणी में। आत्मा के जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश ज्ञान गुण के हैं। सुन रहे हैं आप ध्यान से? उतने ही प्रदेश दर्शन गुण के भी हैं। कहीं कमी है क्या बताइए? नमक के किस कोने में खारापन कम है? पर खारापन नमक है क्या, और नमक सिर्फ खारापन है क्या? इसलिए ये सद्भूत व्यवहार इनमें भेद डालता है। नहीं, लक्षण की अपेक्षा से देखो तो गुण का लक्षण अलग होता है। गुण का लक्षण क्या है, गुण की परिभाषा क्या है? द्रव्याश्रया, जो द्रव्य के आश्रित हो उसे गुण कहते हैं। और क्या लक्षण बतलाया है? गुण का दूसरा लक्षण बतलाया है निर्गुणा, जिसके और कोई गुण नहीं होते, पर जो स्वयं द्रव्य के आश्रित रहता है उसको गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण के अंदर सुख नहीं होगा। सुख गुण आत्मा का एक पृथक गुण है जो ज्ञान गुण नहीं है। समझ में आ रहा है? अस्तित्व गुण और ज्ञान गुण, ये दोनों एक है क्या? इनका स्थान एक है क्या? ये भारी तो नहीं पड़ रहा विषय? थोड़ी आपको रुचि जगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोर्स कंपलसरी है आत्मा, आपके आत्म कल्याण की डिग्री के लिए। इसलिए थोड़ा मेहनत भी पड़े, अगर कठिनाई भी पड़े तो भी सुन लो। जैसे कोर्ट में कितनी पचासों बातें सुनने मिलती उल्टी सीधी, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनते हो कि नहीं? तो देखो, उसने ये बोला, उसने ये बोला, ये तर्क दिया वकील ने, सब ध्यान से सुनना पड़ती है, भले खराब लगे कैसी भी लगे। इसी प्रकार ये आपको कड़वी भी लगे बात, पर है नहीं कड़वी, बड़ी सुंदर बात है, तो उसको सुनिए और समझिए। क्या कह रहे हैं कि प्रदेश भेद नहीं होता गुण और गुणी में। आत्मा जितने स्थान पर रहेगा उतने ही स्थान पर ज्ञान गुण दर्शन आदि जितने अनंत गुण है आत्मा के, सब उसी स्थान पर रहेंगे। इसलिए गुण की सत्ता और द्रव्य की सत्ता आप अलग अलग नहीं कर सकते कि ये ज्ञान गुण की सत्ता अलग और ये आत्मा की सत्ता अलग, ऐसा नहीं कर सकते। गुण गुणी की सत्ता एक है लेकिन लक्षण एक नहीं है। ज्ञान गुण कह सकता है कि आत्मा ही मेरा आश्रय है, लेकिन आत्मा नहीं कह सकता कि ज्ञान ही मेरे आश्रित है। समझ रहे आप? प्रमाद निकाल दो बिल्कुल दिमाग से, ये प्रमाद बहुत भारी पड़ेगा आपको। अगर आप इस बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हमें पता नहीं कि कौन आकर के आपको ये बात इतने सरल ढंग से फिर से बतलाएगा। इसलिए आप अपने पुण्य का महत्व समझकर, इस समय अपना भाग्य उदय में है ऐसा समझकर सावधानी रखना। बिल्कुल क्या काम है? ज्ञान गुण कह सकता है कि मेरा आश्रय केवल आत्मा है, पर आत्मा नहीं कह सकता कि मेरे आश्रित केवल ज्ञान गुण है। आत्मा को क्या कहना पड़ेगा? कि मेरे आश्रित तो दर्शन गुण भी है, मेरे आश्रित तो सुख गुण भी है, मेरे आश्रित तो वीर्य गुण भी है, मेरे आश्रित तो सम्यक गुण भी है। मैं आश्रय हूं, लेकिन आश्रित की सीमा मैं नहीं मान सकता। मेरे आश्रित अनंत गुण है। पर गुण क्या कह सकता है? कि मेरा आश्रय एक है और मेरे आश्रित कोई नहीं। गुण कह सकता है कि नहीं? कि मेरे आश्रित ज्ञान के आश्रित कुछ है क्या? नहीं है। ज्ञान खुद आश्रित है। जो आश्रित है वो किसी को क्या आश्रित करेगा? तो गुणी जो है वो स्वामी हो गया और गुण जो है वो उसका आश्रित हो गया। इतना बड़ा अंतर है दोनों में। तो इसलिए अंतर होने के कारण इस अंतर को प्रतिपादित कौन करेगा? जिस नए का वो विषय होगा वो नए उसको प्रतिपादित करेगा, उसका कथन करेगा, और वो नए है सद्भूत व्यवहार नए। इसलिए सद्भूत व्यवहार नए झूठा नहीं है, जो गुण और गुणी का भेद डालने वाला है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि व्यवहार नए दो काम करता है। देखो दो प्रकार के व्यवहार नए हैं। एक व्यवहार नए क्या करता है? भिन्न को अभिन्न कर देता है। जैसे वासुपूज्य भगवान लाल है, तो लाल तो शरीर है, लेकिन फिर भी भगवान और शरीर दोनों को एक करके कहने वाला, ये एक व्यवहार नय हुआ, असद्भूत व्यवहार नय। जो भेद में अभेद डाले उसे असद्भूत व्यवहार कहते हैं, वो एक प्रकार का व्यवहार हो गया। और दूसरा व्यवहार क्या करता है? जो अभेद में भेद डालता है, एकदम सरलतम शब्द है ये, जो एकदम सुनने में और समझने में रुचिकर, जो भेद में अभेद डाले वो अभूतार्थ व्यवहार में, झूठा व्यवहार में, और जो अभेद में भेद डाले, देखो गुण और गुणी में अभेद है कि नहीं? अभेद है, एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, अभेद है। गुण और गुणी अभिन्न है, लेकिन फिर भी उसमें भेद डालता है वो कि नहीं, गुण लक्षण की अपेक्षा से अलग है और गुणी लक्षण की अपेक्षा से अलग है। गुणी में बहुत सारे गुण होते हैं, गुण में एक भी गुण नहीं होता। गुणी सबको आश्रय देता है, लेकिन गुण किसी को आश्रय नहीं देता, स्वयं आश्रय लेता है। गुण गुण है और गुणी द्रव्य है। इस प्रकार गुण और गुणी में भेद डालने वाला सद्भूत व्यवहार न सच्चा है, झूठा नहीं है। पर निश्चय की अपेक्षा से इसलिए झूठा है क्योंकि निश्चय से तो आत्मा जो गुणी है और गुण है वो भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है। इसलिए अब निश्चय नय के दो भेद समझ लीजिए। एक निश्चय नय है शुद्ध निश्चय और दूसरा है अशुद्ध निश्चय। तो पहले किसको समझना चाहेंगे आप? शुद्ध को। अरे वाह क्या क्वालिटी है। अभी सबकी बात चल रही है। निश्चय इस शब्द पर ध्यान दीजिए। निश्चय, चय का अर्थ चीन चयन, एक धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ होता है संग्रह। क्षय का अर्थ होता है संग्रह, संचय बोलते ना, बहुत संचय कर लिया माना इकट्ठा कर लिया, संग्रह कर लिया, संचय तो उसमें नहीं है। इसके जोड़ने पर क्या हुआ, चयात निष्क्रांत, निषेधात्मक हो गया कि जो संग्रह को न स्वीकार करे वो निश्चय। ठीक है, संग्रह को न स्वीकार करने वाला न निश्चय है। अब इसमें शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो भेद हैं। देखो कर्मों को निश्चय ने नहीं पकड़ेगा, कर्म जो है वो असद्भूत व्यवहार ने का विषय है, और गुणगुणी के जो भेद हैं वो सद्भूत व्यवहार ने के विषय भूत है। अब अगर केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान आदि गुण ले लो तो भी वो सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय हो जाएगा कि हे भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आप वीतराग हैं, आप हितोपदेशी हैं। ये स्तुति कौन से न्याय से हुई, गुण गुणी के भेद से हुई ना। भगवान तो एक थे, उनमें सारे गुण थे, लेकिन फिर भी तीन गुणों को अलग करके उनकी स्तुति की, तो गुण और गुणी को पृथक करने का नाम कौन सा व्यवहार, असद्भूत नहीं है सद्भूत, क्योंकि गुण और गुणी की सत्ता अलग नहीं है। एक सत्ता में से भेद करना सद्भूत और भिन्न सत्ताओं को एक करना असद्भूत, ऐसा कथन है। अब उसमें असद्भूत में भी दो भेद हो जाते हैं, उपचरित और अनुपचरित, पर अभी इतना भारी नहीं देते हम, अभी अपने को निश्चय की बात करनी है। तो निश्चय में शुद्ध और अशुद्ध, जो आत्मा के शुद्ध भावों को ग्रहण करने वाला निश्चय है वो शुद्ध निश्चय है। उस निश्चय की अपेक्षा संसारी सिद्ध सब शुद्ध, कोई अशुद्ध है ही नहीं उस न्याय की दृष्टि से, क्योंकि वो किसी मिश्रण को या किसी विकार को देखता ही नहीं। और अशुद्ध निश्चय जो है वो अशुद्ध जीव की अशुद्धि को भी देख लेता है, पर देखता जीव को है। जैसे जीव रागी है, ये कौन सा न्याय देखता है, अशुद्ध निश्चय, क्योंकि देख किसको रहा है, जीव को, दूसरे को नहीं देखता है। देखो अगर दूसरे को देखे तो व्यवहार हो जाएगा, क्रोध के उदय से देखो इसमें राग हो रहा है, ये व्यवहार में हो गया, क्योंकि सापेक्ष हो गया ना कथन, क्रोध भी आ गया और फिर ये राग भी आ गया या द्वेष आ गया, तो फिर ये सापेक्ष कथन हो गया, व्यवहार में हो गया। पर निश्चय क्या कर रहा है, रागी जीव है, द्वेषी जीव है, विकारी जीव है, संसारी जीव है, किसको पकड़ रहा है वो, जीव को पकड़ रहा है, लेकिन अशुद्धि के साथ पकड़ रहा है, इसलिए अशुद्ध ने। अब क्लियर हो गया, तो वो भी अभूतार्थ है। तो समझ लो आप कि अशुद्ध निश्चय झूठा है और असद्भूत व्यवहार झूठा है, सद्भूत व्यवहार सच्चा है और शुद्ध निश्चय सच्चा है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि जिसने सद्भूत व्यवहार नय को और शुद्ध निश्चय नय को समझ लिया, उनका आश्रय ले लिया, आत्मा को शुद्ध निश्चय से और सद्भूत व्यवहार से अच्छी तरह पहचान लिया, तो खलु सम्मा इच्छी जीवो हवई, वो जीव निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि जीव होगा। जो कितनी बड़ी बात हो गई, अभी चार नयों की अपन चर्चा कर रहे थे, थोड़ा विषय भारी लग रहा था और हमने चेतावनी दी थी कि इसको चूकना मत, अब न चुकने का क्या परिणाम है, आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्वयं बतला दिया कि जिसने सद्भूत व्यवहार से और शुद्ध निश्चय से आत्मा को पहचान लिया, वो नियम से सम्यक दृष्टि जीव है। तो अब कैसी भावना आ रही है अंदर में कि अरे सम्यक दृष्टि हो जाता है सद्भूत व्यवहार में से और शुद्ध निश्चय से आत्मा को जानने वाला। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं खलु, खलु का अर्थ होता निश्चित रूप से, हो सकता है नहीं कह रहे हैं, होगा ही होगा ये कह रहे हैं। कौन से दो नए पकड़ना है, सद्भूत व्यवहार और सिद्ध निश्चय। ये अर्थ बड़ी दुर्लभता से मिलेगा आपको इस गाथा, उसी की दुर्लभता बता रहे कि ये अर्थ जो है इस गाथा का वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा, पर ये बहुत महत्व का अर्थ है। क्योंकि सद्भूत व्यवहार नए को भी अगर मिथ्या मानकर किसी ने छोड़ दिया तो गुण गुणी को पहचानेगा ही कैसे, फिर वो द्रव्य गुण पर्याय का विषय ही नहीं निकल सकता उसमें। द्रव्य गुण पर्याय जो है वो सद्भूत व्यवहार नए के विषय है, और द्रव्य गुण पर्याय से अगर नहीं पहचाना आत्मा और परमात्मा को तो फिर आत्मा और अनात्मा को वो पहचान ही नहीं सकता, और जिसने आत्मा और अनात्मा को नहीं पहचाना वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए ये गाथा 11वीं गाथा बड़े महत्व की गाथा थी। मिले हुए में भी पृथक देखने की और जानने की शक्ति अपने ज्ञान के पास होती है। इसका उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे आप भोजन कर रहे हैं और भोजन के समय परोसने वाले आपसे पूछे क्यों शक्कर बराबर डली है क्या, तो आप तो उसमें लीन थे, खा रहे थे, फिर बोल भी नहीं रहे थे आसपास वालों से, चुपचाप उसमें आनंद मग्न थे। जैसे उसने प्रश्न पूछा तो फिर आपके अंदर एक हलचली प्रारंभ हो गई और उत्तर देने की उत्कंठा में आपने अपने ज्ञान को फिर से बल दिया, यानी घोड़े को लगाम लगाते हैं उस प्रकार से आपने ज्ञान को सावधान किया कि देख भाई इसके प्रश्न का क्या उत्तर है। तो तुरंत जीवा इंद्रिय के संपर्क में जो खीर आपके मुंह के अंदर भरी हुई है, इसमें इलायची भी डली हुई है, केसर भी है और भी दूसरी वस्तुएं हैं, लेकिन उन सबको विवेचित करते हुए पृथक करते हुए आपका ज्ञान जाकर के तुरंत किसको पकड़ता है, उसने क्या पूछा था, शक्कर बराबर डली है, फिर आप उत्तर देते हैं थोड़ी कम है। तो ये विवेचकता नाम का एक अपने ज्ञान गुण का स्वभाव है कि वो मिलावट में से भी किसी एक को छांट कर पृथक करने में सक्षम होता है। बड़ी अद्भुत क्षमता है यह ज्ञान के अंदर, मिली हुई में से भी पृथक करने की क्षमता, मिली हुई वस्तुओं में से भी, बस इसी का नाम है नए। नए वस्तु का स्वरूप नहीं है किंतु वस्तु स्वरूप का एक अंश मात्र है, और यही कारण है कि सभी नयों से वस्तु को देख लेना आवश्यक है, नहीं तो वस्तु अधूरी दिखेगी। क्योंकि आपने सिर्फ शक्कर को जाना ना, अब वो अगला प्रश्न करेगा कि इलायची, तो आपको फिर से उस शक्ति का इस्तेमाल करके, विवेचकता का इस्तेमाल करके फिर से उसमें से छांट कर निकालना पड़ेगा, बराबर है। फिर वो पूछेगा केसर, फिर आपको जवाब देना होगा, फिर चावल नरम हुए हैं कि नहीं है खीर में, तो उसके लिए फिर आपको वो करना पड़ेगा। और अगर एक बार आप अगर किसी वस्तु को मुंह में डालते हैं तो सीधे उसके स्वाद की तरफ डूबने के बजाय आप हर चीज को एक बार टटोल लो। देखो इंद्रियों को जीतने का यही क्रम है कि जब अपन ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो इंद्रियां वश में होती है, जब राग का इस्तेमाल करते हैं तो अपन इंद्रियों के वश में होते हैं। खीर खाते समय अगर कोई उसके स्वाद में डूब गया तो वो इंद्रिय का दास हो जाएगा, और खीर के सब स्वाद को जानकर जो तटस्थ हो गया वो इंद्रिय को जीत लेगा। पर इसके लिए फिर कुछ कषायों को जीतना भी अपेक्षित है, इंद्रियों को जीतना और कषायों को जीतना, तब जाकर के मन जीता जाता है। तो ये एक साधना क्रम चलता है, लेकिन ये क्षमता अपने ज्ञान में होती है कि अपन दोनों चीजें समझ सकते हैं, इलायची कितनी है ये भी समझ सकते हैं, शक्कर कितनी है ये भी समझ सकते हैं, सब चीज समझ सकते हैं। बस यही तरीका अपने को यहां पर लागू करना है जहां नहीं किया आज तक। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरे गुण कैसे हैं, मेरा स्वभाव क्या है, इन सारी बातों को समझना है। तो असद्भूत व्यवहार में से तो मैं शरीर में हूं, मेरा शरीर अमुक रंग का है, मेरी हाइट ये है, मेरा वजन ये है, दर्पण के सामने मैं ऐसा लगता हूँ, और फिर सोते समय पता नहीं कैसा लगता हूँ क्योंकि किसी ने फोटो खींच कर मुझे दिखाया नहीं। ये सारी बातें जो असद्भूत व्यवहार में चली जाएगी, मेरा वजन इतना है, इतना घटा है, इतना बढ़ा है, ये सब असद्भूत व्यवहार का विषय है। पर एक नए को पकड़ करके मनुष्य कितना आकुलित रहता है। यदि सभी नयों से देख ले अपनी आत्मा को तो सद्भूत व्यवहार नए और शुद्ध निश्चय नए से आत्मा को देखने पर वो सम्यक दृष्टि बन जाए। इसमें उदाहरण दिया है कि जब कुएं में बरसात के मौसम में पानी थोड़ा सा मटमैला हो जाता है तो उसी पानी को गांव वाले लोग पी जाते हैं, लेकिन यदि कोई विवेकी मनुष्य कतक फल लेकर आता है, निर्मली के बीज, ये शब्द सुने हमने कभी, निर्मली का जो बीज होता है, और उसको डाल करके वो पानी को उबाल लेता है तो एकदम स्वच्छ हो जाता है पानी, बिल्कुल निर्मल हो जाता है। बस इसी प्रकार अनादिकाल से संसारी जीव उस असद्भूत व्यवहार में जीते जीते शरीर और आत्मा को एक मान करके बैठे हुए हैं। थोड़ी सी फुंसी हो गई तो उनको इतनी पीड़ा होती है कि जिससे मेरा सब कुछ लुट गया। उनको ये नहीं लगता कि ये शरीर पर है और ये फुंसी पुद्गल द्रव्य में हुई है, उनको ये लगता है कि मेरा वैभव, मेरा सौंदर्य रूपी वैभव लुट गया, मैं कंगाल हो गया। आ रहा ना, क्योंकि वो एक नए से देख रहा है, एक दृष्टि डाल रहा है वो। अब दूसरी दृष्टि अगर डाले, देखो दृष्टियों का चमत्कार है संसार। होगी ना, लेकिन एक तीसरी दृष्टि ऐसी भी होगी जिसमें वेदना शांत हो जाएगी। जैसे एक दृष्टांत हुए, समय ज्यादा हो रहा है आज, चर्चा अच्छी निकल आई ना, तो जब भोजन का स्वाद अच्छा होता है तो फिर क्वांटिटी की तरफ ध्यान नहीं जाते, तो इसको फिर अपन आगे के लिए रख लें और क्या। पर ये बड़े महत्व की बात आज आपके अंदर पहुंची है, अगर पहुंच गई हो तो। जावाणी के ज्ञान से मुझे लो कालो, सुवाणी मस्तक चढ़ो सुनाए तुमो,
स्वामी माता की जय, सर्वम् भूतेषु माता की जय।